14 मार्च दिन भर दिन सोमवार, मैं हूँ रेहान फदल। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तुलना ISIS से करने के मुद्दे पर गुलाम नबी आजाद ने सफाई दी।
ISIS वाली जैसी संगठने हम उनका भी उतना ही विरोध करते हैं जितना RSS का करते हैं।
आज से हम शुरू कर रहे हैं कश्मीरी पंडितों पर विशेष श्रृंखला इनका भी कश्मीर। इसमें राहुल पंडिता याद करेंगे श्रीनगर में बिताए अपने बचपन के दिनों को।
कश्मीर में हमें इस बात का एहसास बड़ी जल्दी होता था कि हम पंडित हैं और पाकिस्तानी क्रिकेटरों के कसीदे पढ़ने वाला आपका सहपाठी। हमें इस बात की ताईद भी की जाती कि हम उनसे झगड़ा मोल न लें क्योंकि वे बहुसंख्यक हैं और हम सिर्फ मुट्ठी भर
होंगे आपके पत्रों के उत्तर भी। लेकिन पहले विश्व समाचार।
BBC समाचार, अमल चौधरी से। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS की तुलना खुद को ISIS कहने वाले चरमपंथी संगठन से करने वाले कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद के बयान पर सोमवार को संसद में जमकर हंगामा हुआ। भाजपा के रविशंकर प्रसाद और मुख्तार अब्बास नकवी ने आजाद से जवाब मांगा। इस पर आजाद ने कहा कि उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया और उन्होंने किसी भी तरह से RSS की ISIS से तुलना नहीं की। संयुक्त अरब अमीरात ने कहा है कि यमन में हूती विद्रोहियों से लड़ाई के दौरान उनका एक युद्धक विमान लापता हो गया है। UAE की सरकारी न्यूज़ एजेंसी ने इस घटना की जानकारी दी है। सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन का हिस्सा UAE और यमन में मार्च 2015 से राष्ट्रपति अब्द रब्बू मंसूर हादी के समर्थन में हवाई हमले कर रहा है। अब तक करीब 6,000 लोग यमन में संघर्ष में मारे जा चुके हैं। ये पहला मौका है जब संघर्ष के दौरान कोई अमीराती जेट लापता हुआ है। सीरिया के भविष्य पर जनीवा में नए सिरे से शुरू हुई बातचीत को सीरिया में संयुक्त राष्ट्र के दूत स्टेफान दे मिस्तूरा ने सच्चाई का पल बताया है। वार्ता से पहले मिस्तूरा ने कहा कि ये मसला आज के वक्त का सबसे बड़ा मुद्दा है और ये फिलहाल राजनीतिक संक्रमण के दौर से गुजर रहा है। उनके अनुसार केवल युद्ध ही इसका विकल्प हो सकता है। हालांकि सीरियाई सरकार और ना ही विपक्ष ने राष्ट्रपति बशार अल असद के भविष्य पर कोई समझौता करने में दिलचस्पी दिखाई है। दूसरी तरफ रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने कहा है कि इस विषय से निपटान के लिए जरूरी है कि सभी पक्ष इस पर एकमत होकर चर्चा करें। उन्होंने कहा, हम इस कोशिश में लगे हुए हैं कि सीरिया के मुद्दे से जुड़े सभी पक्ष एक साथ आएं और इस पर बात करें। जाहिर है इसमें सीरिया की राजनीति से जुड़े सभी लोगों का शामिल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो फिर इस वार्ता का कोई भी मतलब नहीं रह जाएगा। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव के शब्द। मिस्र के कानून मंत्री अहमद अल जिंद को पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी करने के लिए बर्खास्त कर दिया गया है। सरकार की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि अहमद अल जिंद को प्रधानमंत्री शरीफ इस्माइल ने बर्खास्त किया है। शुक्रवार को एक साक्षात्कार में जिंद ने कहा था कि खुद पैगंबर मोहम्मद भी अगर कानून तोड़ें तो वो उन्हें जेल भेज देंगे। हालांकि अगले दिन उन्होंने अपने बयान पर माफ़ी मांगते हुए कहा था कि ऊपर वाला उन्हें माफ़ करे। मुस्लिम ब्रदरहुड के आलोचक माने जाने वाले जिंद की जगह कौन लेगा, ये अब तक साफ नहीं हो पाया है। स्पेन के स्टार टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ने कहा है कि वो फ्रांस के पूर्व मंत्री के खिलाफ केस दायर करेंगे। वर्ष 2012 में नडाल 7 महीनों के लिए टेनिस कोर्ट से दूर थे, जिस पर फ्रांस की पूर्व स्वास्थ्य और खेल मंत्री रोजलिन बैशलेट ने कहा है कि शायद नडाल उस दौरान डोपिंग टेस्ट में फेल हो गए थे। 29 वर्षीय नडाल ने कहा कि वो न केवल बैशलेट बल्कि इस तरह के आरोप लगाने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ केस करेंगे। BBC समाचार।
दिन भर में अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फजल का। चरमपंथी संगठन ISIS की तुलना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से करने के मुद्दे पर कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आजाद ने राज्यसभा में अपनी सफाई दी है और कहा है कि इस तरह का बयान उन्होंने दिया ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने मामला उठाते हुए आजाद से मांग की कि वो इसके लिए सदन में माफी मांगे। राज्यसभा में कांग्रेस और सत्ता पक्ष के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। एक रिपोर्ट के साथ सलमान रवि।
राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद के बयान पर सोमवार को जमकर हंगामा हुआ।
आप लोग बैठिए, सुनिए, आप लोग बैठिए,
आप सुनिए,
आपने
सदन में ये मामला संसदीय कार्य राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने उठाते हुए गुलाम नबी आजाद पर आरोप लगाया कि आजाद ने एक समारोह के दौरान चरमपंथी संगठन आईएसआईएस की तुलना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से की है। इस बीच संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद और गुलाम नबी आजाद के बीच सदन में नोकझोंक भी हुई। हंगामे के बीच मुख्तार अब्बास नकवी का कहना था कि अगर गुलाम नबी आजाद ने अनजाने में इस तरह का बयान दिया है तो वो सदन में इसके लिए माफी मांग लें।
उसका सफाई देने की जरूरत नहीं, आने जाने अनजाने में अगर फिसल गए तो माफी मांग ले, इशू क्लोज हो जाता है।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी नकवी की बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि गुलाम नबी आजाद इस बार बोलते बोलते फिसल गए।
चेयरमैन साहब, मैं जाति तौर पे नेता प्रतिपक्ष आजाद साहब की हमेशा इज्जत करता रहा हूँ। जब वो सदन में बोलते हैं, बाहर भी बोलते हैं, तो एक तहजीब जिसकी अपेक्षा होती है उनसे हमेशा मिलती है। मुझे लगता है कि उनको एक बार सोचना चाहिए कि जाने अनजाने में इस बार वो कुछ फिसले हैं।
वहीं आजाद ने सदन में सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने जो बयान दिया था उसकी सीडी वो सदन में पेश कर रहे हैं और अगर उन पर लगाए गए आरोप सही पाए जाते हैं तो सत्ता पक्ष उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव ला सकता है।
तो ऐसी आईएसआईएस वाली जैसी संगठने हम उनका भी उतना ही विरोध करते हैं जितना आरएसएस का करते हैं। व्हाट इज द कंपैरिजन? आई हैव नॉट सेड आर नो 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 दिस इज आप प्रिविलेज करिए, कल प्रिविलेज ये करिए हमको पार्लियामेंट से निकालने कि अगर मैंने ये बताया कि आरएसएस और आईएसआईएस एक है, दैट इज कंपैरिजन।
वित्त मंत्री अरुण जेटली का कहना था कि चरमपंथी संगठन आईएसआईएस की वजह से ही पूरे विश्व में हिंसा फैल रही है और यह संगठन दूसरे धर्मों के अनुयायियों पर बरबर हमले करता है।
आज पूरी दुनिया में विश्व शांति में सबसे बड़ा खतरा कोई संगठन बना है जो दुनिया में अराजकता फैला रहा है वो आईएसआई कि दूसरे मजहब में विश्वास करने वालों के साथ क्या इलाज होना चाहिए, उनकी महिलाओं का बलात्कार कैसे होना चाहिए, ये उसकी एक फिलॉसफी, उसके दस्तावेज हैं।
हालांकि गुलाम नबी आजाद ने राज्यसभा में अपनी सफाई जरूर पेश की मगर सदन के बाहर उन्हें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। सलमान रावी, बीबीसी दिल्ली।
रविवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से आए एक बयान पर कि नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण का फायदा अमीरों को नहीं मिलना चाहिए, आज सरकार ने साफ किया कि वो आरक्षण नीति में कोई भी बदलाव करने नहीं जा रही है। संसद में आज ये मामला बहुजन समाजवादी पार्टी की नेता मायावती ने उठाया। विनीत खरे की रिपोर्ट।
राजस्थान के नागौर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रतिनिधि सभा की बैठक के बाद रविवार को सर सहकार्यवाह भैयाजी जोशी ने संवाददाताओं के एक सवाल के जवाब में कहा था,
जब संपन्न वर्ग भी आरक्षण की मांग करता है तो एक लगता है कि एक सही दिशा में सोच नहीं है, ऐसा मानते हैं। जो संपन्न है जिन्होंने तो अधिकार छोड़ने चाहिए, समाज के दुर्बल वर्ग की सहायता करनी चाहिए, उसके स्थान पर अपने लिए आरक्षण मांगना, मैं समझता हूँ कि अम्बेडकर जी के संविधान के द्वारा दिए हुए जो अधिकार है उसके संदर्भ में सोच की कमी है, ऐसा मैं मानता हूँ।
ये मामला आज राज्यसभा में उठा जहाँ बहुजन समाजवादी पार्टी नेता मायावती ने कहा,
जो वीकर सेक्शन के लोग हैं उनको जो आरक्षण की सुविधा मिलेगी उसके तीन क्राइटेरिया भारतीय संविधान में है, जो शैक्षणिक रूप में पिछड़े हो, सामाजिक रूप में पिछड़े हो और आर्थिक रूप में पिछड़े हो, तो तीन क्राइटेरिया रखे हैं जिसके आधार पर ये आरक्षण की व्यवस्था की गई है। लेकिन दुख की बात यह है कि आए दिन तो आरएसएस के लोगों के ऐसे बयान आ रहे हैं,
जवाब दिया है
आधार आर्थिक होना चाहिए,
उसका जवाब हो गया,
सामाजिक नहीं होना चाहिए।
जब मायावती अपनी बात रखी रही थी तभी वित्त मंत्री अरुण जेटली बोले कि सरकार की आरक्षण नीति में कोई बदलाव नहीं होने जा रहा है।
खैर अच्छी बात है, सदन ने स्पष्ट किया
है
कि जो आरक्षण के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, लेकिन मेरा नेता
इससे पहले समाजवादी पार्टी की ओर से कहा गया कि आरक्षण को हटाना एक साजिश का हिस्सा है। याद रहे पिछले साल बिहार चुनाव से पूर्व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने आरक्षण की नीति पर पुनर्विचार की वकालत करते हुए कहा था कि ये तय होना चाहिए कि कितने लोगों को कितने दिनों तक आरक्षण दिया जाना चाहिए। संघ के मुखपत्र पांचजन्य और ऑर्गेनाइजर के साथ साक्षात्कार में भागवत ने सरकार को सुझाव दिया था कि वो इस मुद्दे को लेकर एक समिति का गठन करे। उन्होंने कहा था कि जातिगत आरक्षण का दुरुपयोग हुआ है और राजनीतिक दलों ने इसका फायदा भी उठाया है। इस बयान पर भाजपा को सफाई देनी पड़ी थी कि आरक्षण नीति में कोई बदलाव नहीं होने जा रहा है। बिहार में चुनावी हार के लिए कुछ हलकों में इस बयान को भी जिम्मेदार ठहराया जाता है। विनीत खरे, बीबीसी दिल्ली।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम,
बीबीसी हिंदी।
और अब एक अंतर्राष्ट्रीय विषय। सीरिया में संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत इस्तेफान दे मिस्तूरा ने जिनीवा में सीरियाई शांति वार्ता को लेकर एक बार फिर से शुरू हो रही बैठक से पहले कहा है कि अब वक्त आ गया है जब हमें सच्चाई को स्वीकार कर लेना चाहिए। मिस्तूरा ने कहा कि समस्या की मूल जड़ राजनीतिक हस्तांतरण है। सीरिया में जारी संघर्ष को शांति वार्ता के जरिए सुलझाने के पक्षधर रहे मिस्तूरा ने कहा है कि अगर वार्ता के जरिए समाधान नहीं निकलता तो फिर युद्ध का ही विकल्प बचता है। बीबीसी संवाददाताओं के भेजे सार के साथ अमर शर्मा।
सीरिया में पिछले 5 सालों से जारी संघर्ष का समाधान ढूंढने के लिए जिनेवा में शुरू हो रही शांति वार्ता से पहले संवाददाताओं से बात कर रहे मिस्तूरा ने कहा,
स्पॉयलर्स विल ट्राई टू अपसेट द टॉक्स बाय इंसिडेंट्स बाय व्हाटएवर यू विल बी सीइंग।
वार्ता को नाकाम करने की हर मुमकिन कोशिशें होंगी जिसे आप भी देखेंगे और हम भी देखेंगे। हालांकि इन्हें नजरअंदाज कर दृढ़ संकल्प पर कायम रहना होगा। अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को ये क्षमता दिखानी होगी। सार्वजनिक बयानबाजी वार्ता को बाधित कर सकती है, लेकिन ये सच को स्वीकार करने का वक्त है और उम्मीद करनी चाहिए कि एक अच्छा मौका है।
मिस्तूरा ने कहा कि अगर कोई सफलता नहीं मिलती है तो फिर वे इस मसले को उन पक्षों के हवाले कर देंगे जिनका सीरियाई सरकार और विपक्ष पर प्रभाव है, और ये पक्ष हैं रूस, अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद। साथ ही उन्होंने आगाह किया कि शांति वार्ता का कोई विकल्प नहीं होता।
The alternative, some people call it plan B, as you know.
कुछ लोग प्लान बी को विकल्प कहते हैं, लेकिन जैसा कि मैं जानता हूं, एक ही प्लान बी मौजूद है और वो है फिर से युद्ध शुरू कर दिया जाए, और वो भी अब तक किए गए युद्धों से भी बदतर।
सीरिया में एक कमजोर और आंशिक संघर्ष विराम 2 हफ्ते लागू किया गया था। कूटनीतिज्ञ इस पर फिर से बात करना चाहेंगे। वार्ता का केंद्र बिंदु राष्ट्रपति असद का भविष्य है, जिस पर सहमति बनने की गुंजाइश न के बराबर दिख रही है। सीरिया की सरकार ने साफ कर दिया है कि अभी वे वार्ता करने की स्थिति में नहीं हैं। विपक्षी कार्यकर्ता रफीफ जुएजाती ने कहा कि सीरिया की सरकार का रुख किसी भी सौदेबाजी को नाकाम करने वाला है।
I don't see a lot of hope in these talks. I believe the Assad regime...
इन शांति वार्ताओं से मुझे कोई उम्मीद नहीं। मुझे लगता है कि असद सरकार उन्हें गोली मार देना चाहती है जो वार्ता में ये शर्त रखना चाहते हैं कि सीरिया के भविष्य में बशर अल असद की भूमिका पर कोई चर्चा हो। असद सरकार ने ऐसी किसी भी चर्चा की गुंजाइश से इनकार किया है जिसमें सत्ता के हस्तांतरण में कोई प्रबंधक निकाय जैसा ढांचा बन सके।
हालांकि रफीफ जुएजाती ने ये उम्मीद जताई है कि ये वार्ता सीरिया में वर्तमान में लागू आंशिक संघर्ष विराम को आगे भी जारी रखेगी। सीरिया में विपक्षी समूह किसी भी कीमत पर राष्ट्रपति बशर अल असद को सत्ता से हटाने को बेताब हैं, और असद किसी भी कीमत पर झुकने को तैयार नहीं दिखते। अभी शुरू हो रही वार्ता से पहले फरवरी की शुरुआत में जिनेवा में सीरिया शांति वार्ता नाकाम हो गई थी। सीरिया में राष्ट्रपति बशर अल असद के खिलाफ मार्च 2011 में बगावत की शुरुआत हुई थी। इन बीते करीब 5 सालों में अब तक करीब 2.5 लाख से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। संघर्ष की वजह से 1.3 करोड़ लोग अपने घर से बेघर हो गए हैं।
सीरियाई शांति वार्ता की शुरुआत।
बीबीसी हिंदी रेडियो पर बुधवार को दुनिया जहां
अंतर्राष्ट्रीय खबरों के पीछे का सच,
शुक्रवार को इतिहास की परतें खोलती विवेचना,
और शनिवार को आपकी आवाज इंडिया बोल।
ये बीबीसी है, आप दिन भर सुन रहे हैं रेहान फदल के साथ। तमिलनाडु के तिरुप्पर जिले में एक व्यस्त सड़क पर कुछ अज्ञात लोगों ने रविवार को दिन दहाड़े एक व्यक्ति की पीट पीट कर हत्या कर दी और उसकी पत्नी को गंभीर रूप से घायल कर दिया। दलित समुदाय के शंकर और राजनीतिक रूप से शक्तिशाली थेवर जाति की कौशल्या की शादी 8 महीने पहले हुई थी। इमरान कुरैशी की रिपोर्ट।
शंकर एक इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र हैं जिन्होंने कौशल्या से शादी कर ली थी। शंकर का परिवार ने कौशल्या को अपना लिया था, हालांकि वो तेवर जाति की थी, लेकिन कौशल्या के परिवार वालों को यह रिश्ता पसंद नहीं था क्योंकि शंकर दलित परिवार के थे। इतवार के दोपहर को जब शंकर और कौशल्या उदुमल पेट के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स गए थे और उसके सामने रोड के दूसरी ओर जा रहे थे, तब 3 लोगों ने दरांती से उन पर हमला किया। शंकर ने हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही आखिरी सांस ले ली थी। कौशल्या के सर पर बहुत चोट लगी है और वो अभी भी हॉस्पिटल में है। शंकर के भाई विघ्नेश्वरन कहते हैं, हाँ, दोनों का लव मैरिज था। दोनों अलग जाति के हैं। हमारी भाभी तेवर समुदाय से हैं और हम दलित हैं। थोड़े महीने पहले भाभी के लोग घर आए थे और उनको उनके घर ले जाना चाहते थे। हमारी भाभी मानी नहीं, उन्होंने सीधे इनकार कर दिया। ये हत्या इसीलिए की गई है। ये थे विघ्नेश्वरन के शब्द। शंकर और कौशल्या पर जो हमला हुआ वो शॉपिंग मॉल के CCTV पर रिकॉर्ड हो गया और आज सुबह से शंकर के गांव के लोग वहां रास्ता रोको प्रदर्शन कर रहे हैं। शंकर के परिवार के लोगों ने पोस्टमार्टम के बाद उनके शव को नहीं लिया। उनकी मांग ये थी कि पुलिस उनके बेटे के हत्यारों को पहले गिरफ्तार करें। दूसरी ओर कौशल्या के पिता चिन्नस्वामी ने डिंडीगल के नीला कोटाई में जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के सामने आत्मसमर्पण कर लिया। पुलिस ने हत्यारों को गिरफ्तार करने के लिए 6 स्पेशल टीम बनाई है। तमिलनाडु में थोड़े सालों से इस तरह के कई वाक्य सामने आ रहे हैं। बेंगलुरु से इमरान कुरैशी।
आज से हम शुरू कर रहे हैं कश्मीरी पंडितों पर विशेष श्रृंखला इनका भी कश्मीर। इसके तहत पहले हम 5 कश्मीरी पंडितों के अनुभव प्रसारित कर रहे हैं जिन्हें अलगाववादी आंदोलन शुरू होते ही कश्मीर घाटी में अपना घर और धरती छोड़कर निकलना पड़ा था। पत्रकार और लेखक राहुल पंडिता 1996 से दिल्ली में रह रहे हैं। वो येल वर्ल्ड फेलो रह चुके हैं और उनकी किताब अवर मून हैज ब्लड क्लॉट्स और हेलो बस्तर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज माओइस्ट मूवमेंट काफी चर्चित रही है। राहुल पंडिता याद कर रहे हैं श्रीनगर में बिताए अपने बचपन के दिनों को।
अब भी सपनों में बेचैन सा मैं खुद को अपने घर के बरामदे में तैरता सा देखता हूं। उसके लॉन में सेब का एक पेड़ था, उसकी सबसे मोटी शाख से झूलता हूं। उसके गुलाब की क्यारियों के बीच छिपकर मैं चंद्रशेखर आजाद की तरह अंग्रेजी सरकार के खिलाफ मंसूबे बनाता हूं, ठीक जैसे बचपन में किया करता था। मैं 1990 में 14 साल का था जब मेरे परिवार को कश्मीर छोड़ना पड़ा। तब से लेकर अब तक हम कई जगहों पर कई मकानों में रहे, लेकिन उनमें से किसी को भी मैं घर नहीं कह पाया। घर तो बस एक ही था जो वादी में पीछे छूट गया, लेकिन कभी सोचता हूं क्या वो वाकई पीछे छूट गया। मेरी माँ और पिताजी ने अपनी पूरी जमा पूंजी, माँ के गहने और दोनों के प्रोविडेंट फंड जोड़कर श्रीनगर में वो घर बनाया जिसमें मैंने होश संभाला। उनके पास थोड़ा भी पैसा जमा होता वो उसे घर पर लगा देते। मेरी बहन और मैं स्कूल से लौटकर घर के पीछे लकड़ी की बनी बालकनी में बैठकर होमवर्क पूरा करते। माँ शाम 5 बजे दफ्तर से घर आती और अपने पर्स की पिटारी से दूर दराज के गांव की सौगातें हमारे सामने रखती। हरे अखरोट, बादाम, भुट्टे, सिंघाड़ा और चेरी, जिन्हें हम कश्मीरी में गिलास कहते हैं। और फिर ठीक 6 बजे पिताजी नारंगी रंग की मछली के आकार की डोरबेल बजाकर अंदर आते और सोवियत लैंड मैगजीन किसी लूटे हुए खजाने की तरह हमारे सामने रखते। हमारे घर में कोई भी वामपंथी नहीं था, लेकिन एक दोस्त ने अपने दादाजी से प्रेरणा पाकर ब्रिजनेफ के भारत दौरे के उपलक्ष्य में टॉफी और च्युइंगम से एक स्मारक बनाया। हमारे घर में अगर कोई विचारधारा थी तो ये कि ज्ञान यानी नॉलेज के बिना जीवन व्यर्थ है। इसीलिए ऊपर एक कमरे में किताबों का एक बड़ा शेल्फ था। बसंत में एक खास दिन इन्हें निकालकर इनकी पूजा की जाती। कश्मीर में हमें इस बात का एहसास बड़ी जल्दी होता था कि हम पंडित हैं और पाकिस्तानी क्रिकेटरों के कसीदे पढ़ने वाला आपका सहपाठी या 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या पर खुशी जाहिर करने वाला आपका पड़ोसी। हमें इस बात की ताईद भी की जाती कि हम उनसे झगड़ा मोल न लें क्योंकि वे बहुसंख्यक हैं और हम सिर्फ मुट्ठी भर। हमें ये याद तो रहता लेकिन बचपन में हम इसके बारे में ज़्यादा सोचा नहीं करते थे। हमारे पास करने को और देखने सोचने समझने के लिए कितना कुछ और था। मसलन शालीमार बाग में घूमने वाले विदेशी पर्यटकों में कईयों के बाल लंबे क्यों हैं, कश्मीरी उन पर तंज कसते हुए गाते जाना ना ये अजब हाल देखो लंबे लंबे हिप्पियों के बाल देखो, या ये कि पोखरेबल मंदिर में वो नवयुवक अभिनव गुप्त और दार्शनिक निचाह पर लंबे व्याख्यान के बाद आंखें बंद कर समाधि में क्यों चला जाता है, या ये कि लाल चौक के घंटाघर की घड़ी में ठीक टाइम क्यों नहीं रहता। पर हमें इस बात का जरा भी पता नहीं था कि कुछ ही सालों के बाद कश्मीर में ठीक टाइम बीसों सालों तक नहीं रहेगा। हम शिवरात्रि पर अपने देवताओं को पूजते रहे और बसंत में अपनी किताबों को, जब घर से निकले तो इन्हें ही साथ लेकर निकले। वो अब भी हमारे साथ हैं और साथ हैं सपने जिनमें मैं खुद को देखता हूँ अपने घर के बरामदे में तैरता हुआ सा सेब के पेड़ की सबसे मोटी शाख से झूलते हुए। अब घर बस सपनों में ही जाना होता है।
इनका भी कश्मीर। पहली कड़ी में राहुल पंडिता याद कर रहे थे श्रीनगर में बिताए अपने बचपन के दिनों को। आज सोमवार है और आज के दिन आपको इंतजार रहता है अपने पत्रों का। आपके पत्रों के साथ हैं स्वाति बख्शी और राजेश जोशी।
आपकी राय। नमस्कार, स्वीकार कीजिए राजेश जोशी का।
और मैं हूँ स्वाति बख्शी।
स्वाति बख्शी मेरे साथ हैं, उनके साथ हैं बहुत सारी चिट्ठियां, ईमेल। तो स्वाति, मैं देख रहा हूँ कि कुछ नई चिट्ठियां हैं, एक अंग्रेजी में लिखी है, पीले पोस्ट कार्ड है।
हाँ।
आप कहाँ से शुरू करना चाहती हैं?
मैं सबसे पहले जो चिट्ठी उठाऊंगी वो राजू राम सेन की चिट्ठी उठा रही हूँ, भीमावतान जोधपुर से। इन्होंने चिट्ठी लिखी है राजस्थान से और ये कहते हैं कि नमस्कार भारत। में इन्होंने जो रिपोर्ट सुनी विनीत खरे की कि किस प्रकार से पत्रकारों ने किसी के निजी जीवन में हस्तक्षेप कर उनकी जिंदगी का सत्यानाश कर दिया, ये इन्होंने लिखा है, वो इन्हें काफ़ी पसंद आया है। और इनका कहना है कि खोजी पत्रकारिता के परिणाम अक्सर यही होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन भारत में सभी को अपना जीवन बिताने का हक है। खरे साहब की रिपोर्टिंग बहुत अच्छी लगी।
ये राजूराम साहब उस रिपोर्ट का जिक्र कर रहे हैं जो हमने मनोज वाजपेयी की फिल्म हंसल मेहता की फिल्म अलीगढ़ के रिलीज होने से पहले प्रसारित की थी, जिसमें अलीगढ़ में एक रिक्शे वाले और एक प्रोफेसर के बीच में जो संबंध थे उसके बाद किस तरह से प्रोफेसर की मृत्यु हो गई, उस पर ये जिक्र कर रहे हैं। लेकिन इनकी चिट्ठी तो है ही है, इन्होंने कहा सबको अपना जीवन जीने का हक है। एक दूसरी चिट्ठी जो अंग्रेजी में है वो किन्होंने लिखी है?
ये फकीर नारायण पांडी, जो मैं पढ़ पा रही हूँ, नाम बहुत ही साफ हैंडराइटिंग में नहीं लिखा है, लेकिन ये चिट्ठी हमें कालाहांडी उड़ीसा से आई है और इन्होंने अंग्रेजी में चिट्ठी लिखकर भेजी है, मैं हिंदी में पढ़कर बता देती हूँ। कहते हैं कि विनीत खरे ने जिस तरह से अलीगढ़ में प्रोफेसर की होमोसेक्सुअलिटी के ऊपर कहानी की, दो कहानियाँ उन्होंने की, तो मेरे ख्याल से बीबीसी का जो कमिटमेंट है वो इस तरह के किसी कारण को प्रमोट करना नहीं होना चाहिए। सेक्सुअलिटी यानी कि यौनिकता जो है वो एक स्त्री और पुरुष के बीच का मसला है और बीबीसी को ये बात पूरी तरह से पहले सोचनी चाहिए कि उसके जो सुनने वाले हैं उनको किस तरह के विषय सुनाए जाने चाहिए। इन्होंने लिखा है कि प्लीज डू नॉट अंडरमाइन द टेस्ट ऑफ द लिसनर्स, कहना चाहते हैं।
जी हाँ, ये बिल्कुल मैं इनकी बात समझ रहा हूँ और ये क्यों कह रहे हैं ये भी मैं समझ रहा हूँ। बहुत सारे श्रोताओं को अपनी पसंद की चीज़ें ही सुननी चाहिए ऐसा उनको लगता है, लेकिन समाज में जो कुछ हो रहा होता है वो आपके सामने रखना वो हमारी जिम्मेदारी है। आप सोचिए क्या किसी व्यक्ति को सिर्फ इस वजह से मर जाना चाहिए या गिरफ्तार हो जाना चाहिए कि उसकी यौनिकता क्या है, उसका सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है, क्या हम इस तरह के समाज में रहना चाहेंगे? दूसरे हमारे जो श्रोता राजू राम साहब हैं उन्होंने इसका जवाब दे दिया है कि सबको अपने तरह से जीने की छूट मिलनी चाहिए और किसी का ये हक नहीं बनता कि किसी के घर में घुस करके स्टिंग ऑपरेशन करे और उनकी निजी ज़िंदगी को सामने लेकर के आए। बहरहाल हमारे सामने सिर्फ एक मकसद था, न तो किसी चीज़ को बढ़ावा देना था, न किसी चीज़ को दबाना था। जो हो रहा था अलीगढ़ फिल्म में, जिस तरह के सवालात उठाए गए थे, उनको रियलिटी में क्या अलीगढ़ में हुआ उसको सामने लाना था।
और हर मसले का एक, जिसे हम पैक कहते हैं,
हाँ, अलीगढ़ फिल्म आई थी तो इसलिए ये बताना जरूरी था कि असल में जो कैरेक्टर्स जिन पर आधारित ये फिल्म थी उनका क्या हुआ, उनका क्या हाल है।
जी, ये दूसरी चिट्ठी दिलावर कादरी की है, जैसलमेर राजस्थान से। इन्होंने तारीफ की है आपकी, रिहान फजल की, निखिल रंजन की और सुशीला सिंह की, और कहते हैं कि आप लोगों से ही बीबीसी जिंदा है।
बहुत शुक्रिया। मैं तो कादरी साहब ये कहूंगा कि आपकी वजह से हम हैं।
लेकिन उन्होंने कहा है कि 23 मार्च को शहीदी दिवस है भगत सिंह का, तो अगर हो सके तो उनकी जिंदगी पर रोशनी डाली जाए।
जी, इसकी हम, आपकी बात हमने नोट कर ली है। इसकी कोशिश करेंगे कि 23 मार्च को हम लोग भगत सिंह पर कुछ सामग्री प्रस्तुत कर सकें। लेकिन जैसा कि आप जानते ही हैं कि इसके लिए काफ़ी मशक्कत लगती है, फिर भी हमने आपकी बात को एकदम नोट कर लिया है और कोशिश पूरी की जाएगी।
फारूक अब्दुल्ला फिजा की चिट्ठी है, लक्ष्मीपुर रक्सौल पूर्वी चंपारण बिहार से। कहते हैं कि ब्रजेश उपाध्याय जो हैं वो वॉशिंगटन डायरी तो पेश करते हैं, बहुत अच्छी लगती है, लेकिन अगर वो लगातार वॉशिंगटन न्यूज़ पेश करें जिससे राष्ट्रपति चुनाव की हलचल पता चलती रहे।
वॉशिंगटन न्यूज़ मतलब अमेरिका की न्यूज़ तो हमारे कार्यक्रमों में आती ही रहती है। किस तरह से ट्रंप ने आज क्या बयान दिया, कल क्या बयान दिया, किस तरह से की जनता उनको या तो स्वीकार कर रही है या स्वीकार नहीं कर रही है, वो हमारे कार्यक्रमों में रिपोर्ट्स आती ही हैं। लेकिन ब्रजेश उपाध्याय की जो डायरी है उसकी एक अलग जगह है, लोग उसको पसंद करते हैं, तो वो भी जारी रहेगी और खबरें भी जारी रहेंगी।
और आखिरी में ईमेल उठा पाऊंगी, इलाहाबाद से अनिल शुक्ला ने लिखा है कि महात्मा गांधी पर रिहान फजल की विवेचना बेहतरीन रही, लेकिन इंडिया बोल में यही जताने की कोशिश हुई कि मोदी सरकार गरीब और किसान विरोधी और कॉरपोरेट समर्थक है। इसी तरह से रविवार को कन्हैया कुमार का इंटरव्यू चलाया गया, जिन्हें मोदी को नापसंद करने वाले लोग मसीहा मानते हैं, ये बीबीसी के मोदी विरोधी एजेंडा में फिट है।
ये तो सीधे सीधे शुक्ला साहब आप आरोप लगा रहे हैं, लेकिन आप सुझाव भी थोड़ा देते तो अच्छा रहता कि क्या हम कन्हैया का इंटरव्यू, जो जेएनयू के छात्र संघ के अध्यक्ष हैं, उनका इंटरव्यू हमको नहीं चलाना चाहिए था, या इंडिया बोल में हमको इस विषय पर बात नहीं करनी चाहिए थी कि एक बड़े उद्योगपतियों का कर्ज माफ़ कर देते हैं बैंक वाले, लेकिन छोटा किसान भूखमरी या कहें कि कर्ज में डूब करके आत्महत्या करने पर मजबूर होता है। अगर आप ये सुझाव दे रहे हैं कि ऐसे विषय हम उठाएं ही नहीं, तो ये थोड़ा सा ज़्यादती हो जाएगी, क्योंकि हमको पत्रकारिता करनी है और पत्रकारिता में वो सब कुछ करना है जिसमें समाज का को आईना दिखाया जाए और सरकारों को आईना दिखाया जाए। मुझे लगता है कि बहुत सारी चिट्ठियां हो गई हैं स्वाति, अगर आप कहें तो अब मैं पता बता दूं।
बिल्कुल,
तो हमारा पता है बीबीसी हिंदी सेवा, पोस्ट बॉक्स 3035, नई दिल्ली 110003, और ईमेल से लिखना चाहें तो hindi.letters@bbc.co.uk।
नमस्कार।
और अब नजर दौड़ाते हैं खेल समाचारों पर। आदेश मेरे सामने बैठे हैं, बहुत संक्षेप में आदेश।
जी रेहान, कल से आईसीसी विश्व कप 2020 क्रिकेट टूर्नामेंट के सुपर 10 के मुकाबले शुरू होने जा रहे हैं, जहां भारत नागपुर में अपना पहला मुकाबला न्यूजीलैंड से खेलेगा। ये भी अजीब इत्तेफाक है कि भारत ने आज तक 2020 क्रिकेट में न्यूजीलैंड से एक भी मुकाबला नहीं जीता है। 4 मैच हुए हैं, 4 में हार मिली है, लेकिन इस साल भारत ने 11 में से 10 2020 मुकाबले अपने नाम किए हैं। उधर पाकिस्तान ने आज अभ्यास मैच में श्रीलंका को 15 रन से हरा दिया। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए मोहम्मद हफीज़ के नाबाद 70 रनों की मदद से निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 157 रन बनाए। जवाब में श्रीलंकाई टीम 9 विकेट खोकर 142 रन बना सकी। पाकिस्तान के इमाद वसीम ने 25 रन देकर 4 विकेट झटके। पाकिस्तान विश्व कप में अपना पहला मैच बुधवार को बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगा।
बहुत बहुत धन्यवाद आदेश। और चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की तुलना खुद को आईएसआईएस कहने वाले चरमपंथी संगठन से करने वाले कांग्रेस नेता गुलाम नबी आज़ाद के बयान पर सोमवार को संसद में जमकर हंगामा हुआ। संयुक्त अरब अमीरात ने कहा है कि यमन में हूती विद्रोहियों से लड़ाई के दौरान उसका एक युद्धक विमान लापता हो गया है। यूएई की सरकारी न्यूज़ एजेंसी ने इस घटना की जानकारी दी है। सीरिया के भविष्य पर जनीवा में नए सिरे से शुरू हुई बातचीत को सीरिया में संयुक्त राष्ट्र के दूत स्टेफान दे मिस्तूरा ने सच्चाई का पल बताया है। हालांकि सीरियाई सरकार और न ही विपक्ष ने राष्ट्रपति बशर अल असद के भविष्य पर कोई समझौता करने में दिलचस्पी दिखाई है। बीबीसी समाचार।
समय पहुंचा है आपसे विदा लेने का। स्टूडियो संभाल रहे थे अजीत सारथी, रेहान फजल को सभी साथियों के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।